समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा कार्यक्रम का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि थी या जन्म दिवस। आज के परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, एंड वेरी गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। यू नो व्हाट दिव्या, आई फील लाइफ इज अ लेसन दैट वी कीप लर्निंग ग्रेजुअली, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ अस हैव अ स्टूडेंट इन अस। On the occasion of the International Students' Day today, let me take this opportunity to remind all of us to keep that student alive within.
बिल्कुल ठीक कहा रेशमा आपने। आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है। 17 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। ये 28 अक्टूबर 1939 को नाजी कब्जे वाले चेकोस्लाविया की राजधानी प्राग में वहां के छात्रों और शिक्षकों ने अपने देश की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिस पर नाजियों ने गोलियां चलाईं और उसके बाद छात्रों को होस्टल से घेर करके 1200 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया और एक यातना शिविर में बंद कर दिया गया और उसके बाद 9 छात्रों को फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद 2 वर्ष बाद फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों का लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जहां पर यह फैसला लिया गया कि नाजियों द्वारा शहीद किए गए छात्रों की याद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा।
यस, एंड नाउ कमिंग बैक टू आवर शो, एज यू मेंशनड, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो, लाइक डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। वील डिस्कस ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi holds talks with Nigerian President Bola Ahmed Tinubu at Abuja to review strategic partnership and bilateral relations.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
With only 2 days left, hectic campaigning underway for assembly elections in Maharashtra and Jharkhand.
भारत ने ओडिशा के तट से पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया।
Australia, Japan and United States reaffirmed their commitment to support India's maritime surveillance efforts in Indo-Pacific region.
और बिहार में खेली जा रही महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में भारत का सामना आज जापान से।
Now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll just talk about Cervical Cancer Elimination Day of Action. Cervical Cancer Elimination Day of Action is observed every year on November 17th. Today, we'll dive into the critical initiative aimed at eliminating cervical cancer as a public health problem and how frontline health workers are playing a pivotal role in this global fight. Cervical cancer develops in a woman's cervix and is the 4th most common type of cancer among women globally. Almost all cervical cancer cases are linked to infection with high-risk human papillomavirus, HPV, an extremely common virus. It is one of the leading causes of cancer-related deaths among women worldwide, but the good news is it's largely preventable. With the launch of the global strategy to eliminate cervical cancer as a public health problem, the World Health Organization, or WHO, has set clear targets for all countries to aim for by 2030.
और रेशमा, जैसे कि आपने बताया कि टीकाकरण, शीघ्र पता लगाने और उपचार के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है, इसीलिए वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की रणनीति आती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो कि हैं 15 वर्ष की आयु तक किशोरियों को HPV वैक्सीन का 90% टीकाकरण कवरेज, उच्च प्रदर्शन परीक्षणों का उपयोग करके 35 वर्ष की आयु तक और फिर 45 वर्ष की आयु तक महिलाओं की 70% सर्वाइकल कैंसर की जांच, कैंसर पूर्व घावों और आक्रामक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर वाली महिलाओं के लिए 90% उपचार, ये लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए हमें एक दिशा प्रदान करते हैं।
Yes, and this year's theme is elevating frontline health workers, transforming global commitments into life-saving actions. While these goals are set at the global level, they can only be achieved with the dedication and hard work of frontline health workers, the doctors, nurses, and health educators who are directly involved in delivering prevention, treatment, and care services to the communities. This day of action is a reminder of how important the work of health professionals is in shaping the success of these efforts.
इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक प्रतिबद्धताओं को वास्तविक जीवन रक्षक कार्यों में बदलने में इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। कैंसर से लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान है। वे लड़कियों का टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर के शुरूआती लक्षणों के लिए महिलाओं की स्क्रीनिंग, कैंसर पूर्व घावों के लिए उपचार प्रदान करने और यहां तक कि उन्नत चरण का सामना करने वाली महिलाओं के लिए उपशामक देखभाल का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि फिर भी रेशमा, हम देखते हैं कि कई सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। अभी भी सर्वाइकल कैंसर के कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे में जागरूकता के द्वारा हम सीख सकते हैं और हम सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं उन देशों से जो इस दिशा में काफी प्रगति कर चुके हैं। तो हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की, जिसने जहां के देशों ने काफी प्रगति की है इस दिशा में, इसको इसका उन्मूलन करने में। उदाहरण के लिए भूटान को ही ले लीजिए। देश ने वर्ष 2030 के अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य प्रमुख परियोजना शुरू की है और इस परियोजना ने इसके टीकाकरण अभियानों और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इंडोनेशिया ने व्यापक एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रमों के साथ साथ एक राष्ट्रीय गर्भाशय ग्रीवा कैंसर योजना शुरू की है।
Yes, and Divya, we must also talk about India's efforts in the fight against cervical cancer. India is scaling up population-based cancer screening for oral, breast and cervical cancers under the National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Disease. For making cervical cancer screening cost-effective, India uses the visual inspection of with acetic acid, VIA method, which is simple, cost-effective and efficient and allows healthcare workers to detect early signs of cervical cancer without the need for advanced laboratory infrastructure. India is expanding access to specialized cancer treatment centers under its Strengthening of Tertiary Care Cancer Centers program. Through the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, India ensures financial protection and affordable cancer care for citizens. And when it comes to research, Indian Council of Medical Research, ICMR, is leading implementation research to enhance screening, early diagnosis and treatment initiation for cervical cancer.
बिल्कुल रेशमा, जिस तरीके से भारत में इस दिशा में काफी पहल की गई हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सकारात्मक उदाहरणों के साथ साथ अभी भी रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में टीकों की आपूर्ति की कमी भी एक मुद्दा है और साथ ही टीकों की लागत अब भी कई देशों के लिए एक बाधा बनी हुई है जो उन्हें राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम करने से रोक रही है। और एचपीवी वायरस के अलावा कैंसर की रोकथाम में कुछ और प्रमुख बाधाएं हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी, भय और प्रारंभिक लक्षणों का शुरुआती दौर में नहीं उभरना, जिसकी वजह से उच्च मृत्यु दर होती है। तो सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने में मदद करने के लिए हम एक व्यक्ति के रूप में, एक समुदाय के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, इसके लिए हम सभी को एक भूमिका निभानी है।
Yes, there are a few important points that we have to remember. First is vaccination. Ensure that adolescent girls, ideally by age 15, receive the HPV vaccine. If you are a parent, talk to your local health providers about how you can get your daughters vaccinated. Second is screening. Encourage women to get regular cervical cancer screenings, especially between the ages of 35 and 45. Regular screening can detect early changes before they become cancer. Third is support health workers. Advocate for more support for health workers who are on the front lines. They need the resources, training and tools to carry out effective cancer prevention, diagnosis and treatment. And fourth and last but not the least, policy advocacy. Call on your government to include cervical cancer prevention and care in universal health coverage packages. This should include HPV vaccination, screening, treatment and palliative care services.
और जैसा कि हम आज के विशेष कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, ये देख आइए याद रखें कि सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन एक साझा जिम्मेदारी है। नीति निर्माताओं, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्ताओं, नागरिक समाज और आम जनता सभी को इससे लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए, तभी हम सर्वाइकल कैंसर की गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं।
Yes, so on this Cervical Cancer Elimination Day of Action, we reaffirm our commitment to ensuring that every woman and girl has access to life-saving interventions. Together, we can help eliminate cervical cancer as a public health problem and ensure that future generations of women live healthier, longer lives.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो रेशमा, कहाँ हम चल रहे हैं परिक्रमा के इस सेगमेंट में?
We'll first go to Assam. In Assam, Ras Festival is celebrated during the month of November across the state, and this festival is dedicated to Lord Krishna. Hauli of Barpeta district, Nalbari, Nagaon, Palashbari of Kamrup and the river island Majuli are famous for the Ras Festival. More from our correspondent.
The festival of Ras Mahotsav is celebrated in Hauli, Nalbari, Nogaon, Kamrup, Majuli and other parts of the state during the month of November. The Ras Mahotsav has become a part and parcel of these districts and got intertwined with the socio-cultural life. The historic three-day-long Ras Mahotsav at Majuli will conclude today. It is an extraordinary festival of depiction of Krishna's life using masks, puppets, folk dances and songs. During the Ras festival, Majuli becomes a veritable place for pilgrimage. Locally made masks are one of the major features of the dance dramas, which represent various mythological creations. Exhibitions also form an important part of this festival and display those articles that immensely reflect the rich tradition of the state. Aminul Haq Zuddar, Akashvani News, Guwahati.
And now let's move on to Tamil Nadu. The Tamil Nadu government has officially completed the land acquisition to extend the shorter runway of Tiruchirappalli International Airport, which is one of the busiest international airports in India, connecting 10 foreign destinations. As 90% of the land required for the expansion is acquired, Trichy District Administration has issued the enter upon permission to Airports Authority of India for commencing the expansion work to improve the airport international passenger service. More from our correspondent.
Aviation is not just about the destination. It's about the journey and the experiences along the way. It's a constant reminder that with determination and perseverance, we can overcome any obstacle. To give a boon to aviation sector, Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the new terminal building at Tiruchirappalli International Airport, which is located in the central part of Tamil Nadu. This terminal was developed at a cost of more than 1,100 crore rupees, and thereby the two-level new international terminal building capacity has increased to serve 44 lakh passengers annually. The new terminal hosts state-of-the-art amenities and features for passenger convenience. The shorter runway of Trichy International Airport has to be extended as the potential of passenger service is increasing day by day. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
The 30th Kolkata International Film Festival will celebrate the birth centenary of five stalwarts of the film world. The city will host the 30th International Film Festival from December 4 to 11. According to the State Information and Cultural Affairs Department, the KIFF committee is planning to celebrate the centenary of five cinema legends: Tapan Sinha, Arundhati Devi, Harisadhan Dashgupta, Marlon Brando and Marcello Mastroianni. The city's most awaited film festival will likely pay tribute to these icons with special exhibitions honoring their unforgettable contributions to cinema. A report.
Sinha is not only known for his artistic brilliance, but also as one of Bengal's most commercially successful directors. He went on to direct classics like Kabuliwala, Sagina Mahato, Khudito Pashan, Golpo Holeo Shotti, Jhinder Bondi, Adalat O Ekti Me, and Bancharamer Bagan, etc. This year, KIFF plans to honor Sinha's centenary with a special exhibition and screenings of his iconic works. His legacy will also be celebrated at the 55th International Film Festival of India, IFFI, with a special screening of his 1976 classic Harmonium. Cine lovers will also be transported into the silver world of the legendary actress Arundhati Devi at this year's KIFF. To mark her centenary, the KIFF committee has planned a special exhibition offering a glimpse into her rich cinematic journey. Sources informed that the festival would also pay tribute to Horishadan Dasgupta, known as the father of Indian documentaries. Through personal stories and rare images, the KIFF committee plans to showcase his work. A centennial tribute to the godfather Marlon Brando, considered as one of the greatest actors of the 20th century, is also being planned. The exhibition aims at offering an intimate glimpse into his extraordinary life. Plans are also underway to honor Marcello Mastroianni, one of Italy's most loved and internationally acclaimed actors. The festival will feature a retrospective exhibition dedicated to Mastroianni, who attained global fame in the 1960s through his collaborations with director Federico Fellini, especially in La Dolce Vita. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
और अब वक्त है जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डिफेंस न्यूज कैप्सूल का, जिसमें आप सुनेंगे रिजांगला की लड़ाई विषय पर रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई के साथ प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ द्वारा की गई बातचीत के प्रमुख अंश।
भारतीय सैन्य इतिहास में 18 नवंबर यानी आने वाले कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि यही वो दिन था जब 62 वर्ष पहले सन 1962 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी 13 कुमारी रेजिमेंट की एक कंपनी ने मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में चीनी सेना के आक्रमण को असफल करते हुए रिजांगला के युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में अपने असाधारण पराक्रम प्रदर्शन के लिए और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। इस बैटल ऑफ रिजांगला के बारे में जानने के लिए हमने कुमारी रेजिमेंट के पूर्व सैन्य अधिकारी और सैन्य इतिहास के जाने माने नाम मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड से बेहद खास बातचीत की। आइए सुनते हैं बैटल ऑफ रिजांगला पर आधारित इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश।
अगर बात की शुरुआत करें से बैटल ऑफ रिजांगला पे आज हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 62 साल पहले 18 तारीख का वो दिन था जब हमने इस जंग में फतह पाई थी, तो सर क्या उस वक्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में कृपया बताएंगे।
चीन की जो विस्तारवादी नीति थी वो उनकी बनी रही और उन्होंने एक तरह से अपने आगे पेट्रोलिंग करना, इलाकों को डोमिनेट करना, ये सब देखते हुए हमने आगे डिप्लॉयमेंट वाला डिसीजन लिया, जिसकी वजह से फिर और ज्यादा आपस में झड़पें होने लगी, सेनाओं की झड़पें होती रही और फिर अक्टूबर में चाइना ने फाइनल अटैक कर दिया था पूर्वी सीमाओं पर और लद्दाख की सीमाओं पर।
सर जो बैटल ऑफ रिजांगला जब शुरू हुआ क्या परिस्थितियां थी, कितने हमारे जवान वहां पे थे, किस प्रकार हमने लोहा लिया?
रिजांगला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह थी अगर हम टेक्टिकल के तौर पर सोचे, और चीन पहले ही कई इलाकों में कब्जा करते करते आगे बढ़ा था। अब उसकी नजर थी चुशूल पर, और चुशूल एयरपोर्ट और चुशूल अगर ले लेता तो 1962 में पूरा लेह लद्दाख उनके पास। और ये जो पोस्ट है रिजांगला पोस्ट, ये 5500 मीटर यानी कि तकरीबन 18000 फीट के ऊपर थी, वहां पर हमारे जवान डिप्लॉयड थे। और जब चीन जैसे आगे बढ़ रहा था उस समय में, जैसा कि हम सबको जानते हैं हम लोग कि भारत की सेना इतनी इक्विप नहीं थी, और 13 कुमाऊं को 2 दिन के नोटिस पर वहां भेजा गया था, और मेजर शैतान सिंह इनके कंपनी कमांडर थे और तकरीबन 120 लोग वहां पर डिप्लॉयड थे उस इलाके को रक्षा करने के लिए, ताकि चीन की सेना चुशूल तक ना आ सके। यहाँ पर जैसा कि उनका मैंने कहा था कि जज्बा जो हमारे अहीर जवानों का था, वो देखते हुए उन्होंने ये ठान लिया था कि यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी जवान और आखिरी गोली यानी कि लास्ट मैन लास्ट राउंड जिसको हम कहते हैं, वहां तक हम लड़ेंगे और लोहा लेंगे। उनकी बहादुरी को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि चीनी सेनाओं ने भी इनको इज्जत दी।
जी सर बिल्कुल, उनके जज्बे को सलाम है।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
Let's take a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
17th of November is the death anniversary of the valiant hero of the freedom struggle and great revolutionary, Lala Lajpat Rai. Popularly known as Punjab Kesari or the Lion of Punjab, he was a prominent member of the Lal Bal Pal trio, which included Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, who changed the political discourse of the independence movement. Lala Lajpat Rai was born on January the 28th, 1865, in Dhudike, Punjab. In 1886, he moved to Hisar and started practicing law. He also took up journalism and contributed articles to several newspapers such as the Tribune.
In 1914, he quit practicing law and focused on India's freedom struggle. Lala Lajpat Rai founded the Indian Home Rule League in New York and launched a monthly journal, Young India, as well as the Hindustan Information Services Association. Due to his involvement with the Indian National Congress and participation in the political agitation in Punjab, Lala Lajpat Rai was deported to Mandalay in Burma without trial in 1907. He returned the same year when the Viceroy Lord Minto failed to produce evidence to further detain him for subversion. He founded the National College at the Bradlaugh Hall in Lahore and enrolled Bhagat Singh as a student.
In 1920, Lala Lajpat Rai was elected the president of the Indian National Congress. He was jailed from 1921 to 1923 for taking part in the non-cooperation movement. After his release, he was elected to the Legislative Assembly. In 1928, the British government set up the Simon Commission to discuss constitutional reforms in India.
When the commission visited Lahore on 30th October 1928, Lala Lajpat Rai led a non-violent march in protest against it because the panel did not include any Indian member.
Simon Commission! Simon!
The superintendent of police, James A. Scott, ordered a lathi charge on the protesters and personally assaulted Rai, who sustained severe head injuries. He did not recover from the injuries and died on 17th November 1928. Following a heart attack.
Also on the 17th of November 1932, the third and last roundtable conference began. It concluded on 24th December 1932. Gandhiji and the Indian National Congress did not attend the conference. Many other Indian leaders were also absent. Like the previous two conferences, little was achieved.
The recommendations were published in a white paper in March 1933 and debated in Parliament afterwards. A joint select committee was formed to analyse the recommendations and formulate a new act for India. The committee produced a draft bill in February 1935, which was enforced as a Government of India Act in July 1935.
And let's now talk about sports. In India, in hockey, India will lock horns with Japan in their final group stage match of the Women's Asian Champions Trophy at Rajgir in Bihar in a short while from now. India registered their fourth straight win in as many games yesterday, beating China 3-0. With this win, the hosts now move to the first position with 12 points from four games.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं भारतीय सेना के वीर सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे लोंगावाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में राजस्थान के लोंगावाला मोर्चे पर हुई लड़ाई का उन्हें हीरो माना जाता है. इस लड़ाई में कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगावाला पोस्ट पर तैनात थे. सीमा पर पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी और चांदपुरी की कमांड में सिर्फ 120 जवान थे. भारतीय फौज में शानदार सेवाओं के लिए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया. कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों की लोंगावाला मोर्चे पर दिखाई बहादुरी पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनाई गई थी और इस फिल्म में तत्कालीन मेजर कुलदीप चांदपुरी की भूमिका अभिनेता सनी देओल ने निभाई थी.
And Divya, 17th November is also the death anniversary of Bal Keshav Thackeray, also known as Bala Saheb Thackeray. He was an Indian politician who founded the Shiv Sena, a right-wing pro-Marathi and Hindu nationalist party, active mainly in the state of Maharashtra. Thackeray began his professional career as a cartoonist with the English language daily, the Free Press Journal in Bombay, now known as Mumbai. His political philosophy was largely shaped by his father Keshav Sitaram Thackeray, a leading figure in the Samyukta Maharashtra, United Maharashtra movement, which advocated the creation of a separate linguistic state for Marathi speakers.
और आज देश की रक्षा में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की पुण्यतिथि है. वे उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के ग्राम बाडियू पट्टी खाटली से थे. उनका प्रशिक्षण चौथी गढ़वाल राइफल में हुआ. ट्रेनिंग समाप्त करते ही 17 नवंबर 1962 को चौथी गढ़वाल राइफल को नेफा अरुणाचल प्रदेश की टवांग वू नदी पर नूरनांग पुल की सुरक्षा में लगाया गया था, पर चीनी सेना ने वहां पर हमला बोल दिया और इसी में राइफलमैन जसवंत सिंह ने हथगोलों से चीनी सैनिकों पर हमला किया. उनकी एमएलजी ले आए और गोली बरसाने लगे. उन्होंने शत्रु को 72 घंटे तक रोके रखा. हीरो ऑफ द नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया एवं सेना द्वारा उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानांग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद किया जाता है. देश के लिए उनका ये बलिदान अमूल्य है, अनुकरणीय है. देश शहीद जसवंत सिंह को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता है.
वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका. ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे.
भारतीय सैन्य अधिकारी श्रीनिवास कुमार सिन्हा की आज पुण्यतिथि है. वे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल थे. अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने असम, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया. श्रीनिवास कुमार सिन्हा वर्ष 1990 में नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त हुए. उन्होंने 5 पुस्तकों का लेखन भी किया, जिसमें से अ सोल्जर रिकॉल्स नामक आत्मकथा इनकी प्रमुख पुस्तक है. और इसके अलावा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक मोहन जी प्रसाद की भी आज पुण्यतिथि है. उन्होंने राम बलराम, घर परिवार और औरत तेरी यही कहानी जैसी हिट फिल्मों को निर्देशित किया. अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर फिल्म औरत तेरी यही कहानी से मोहन जी प्रसाद ने फिल्म निर्देशन की शुरुआत की थी.
एंड इफ यू टॉक अबाउट बर्थ एनिवर्सरीज, इट्स शोभना समर्थ बर्थ एनिवर्सरी. शी वॉज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ मराठी एथनिसिटी, हु बिगैन हर करियर इन द अर्ली डेज ऑफ टॉकीज मूवीज इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड कंटिन्यूड इन लीड रोल्स इन टू द 1950s. She started in Marathi cinema and her first Hindi film Nigahe Nafrat was released in 1935.
और भारतीय भाषा विज्ञानी, साहित्यकार और अंग्रेजी केंद्र में अंग्रेजी के पूर्व प्रोफेसर कपिल कपूर का आज जन्मदिवस है. उन्हें वर्ष 2000 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में संस्कृत अध्ययन के लिए विशेष केंद्र में संवर्ती प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया. उन्हें पद्म भूषण 2023 में दिया गया था.
इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ जेमिनी गणेशन, बॉर्न रामासामी गणेशन ऑन नवंबर 17, 1919. ही वॉज अ लेजेंडरी इंडियन फिल्म एक्टर नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द तमिल फिल्म इंडस्ट्री, ऑफन रेफर्ड टू एज द Kadal Manan, king of romance. Jamini Ganeshan was a charismatic and versatile performer who left an indelible mark on the Indian cinema landscape.
और आज पद्मजा नायडू का भी जन्मदिवस है. उनको भारत सरकार ने सर्वोच्च दूसरे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था. और इसके साथ ही श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.